الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. اللہ تعالی شانہ اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں ابجوں بندے اور بندیاں اگر اللہ تعالی شانہ کی نافرمانی میں لاکھوں کروڑوں ابجوں اور اربوں سالوں تک لاکھوں کروڑوں اربوں اور ابجوں گناہوں میں مبتلا رہے تو یہ جتنے گناہ اور جتنی نافرمانیاں ہیں ان کی اللہ تعالی شانہ کی رحمت کے ایک قطرے کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں. اللہ اتنے رحیم ہیں، اتنے رحیم ہیں اللہ. اللہ تعالی شانہ ایک حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں، یا عبادی، اے میرے بندو، انکم تخطئون باللیل والنہار، تم رات اور دن خطا کرتے ہو، تم گناہوں میں مبتلا رہتے ہو، گناہوں میں لت پت رہتے ہو. انکم تخطئون باللیل والنہار، شب و روز گناہوں میں گزارتے ہو، میری نافرمانی میں گزارتے ہو، تم غفلت کے شکار ہوتے ہو، تم پر سستی غالب آ جاتی ہے، تم شیطان اور نفس کے تابع ہو کر میری نافرمانی کرتے ہو، میں جس نے تمہیں وجود دیا، میں جس نے تمہیں آنکھیں دی، تمہیں کان دیے، تمہیں زبان دی، تمہیں ہاتھ دیے، انگلیاں دی، تمہیں عاقل بنایا، مجنو نہیں، تمہیں مومن بنایا، منکر نہیں، تمہیں موحد بنایا، مشرک نہیں، تمہیں متبع سنت بنایا، بدعتی نہیں، تمہیں صحیح سالم بنایا، اپاہج اور ڈسیبلڈ نہیں، تمہیں عزتیں دی، ذلت سے بچایا، تمہیں بھوکا نہیں رکھا، تمہیں کھلایا پلایا، ننگا نہیں رکھا، کپڑے پہنائے، بے گھر نہیں رکھا، مکان دیے، بے بس نہیں رکھا، طاقت دی، بے کار نہیں رکھا، اچھے کاموں میں لگایا، پھر بھی تم رات دن میری نافرمانی کرتے ہو، تو مجھے کتنا ناراض ہونا چاہیے، کتنا ناراض ہونا چاہیے، میں تو حاکم ہوں، احکم الحاکمین، میں تمہارے لیے کچھ نہ کرتا، پھر بھی تم میری نافرمانی کرتے، ادنا نافرمانی، تم انہیں مجھے ناراض ہونے کا پورا حق تھا، مجھے سزا دینے کا پورا حق تھا، لیکن میں حاکم بھی، احکم الحاکمین بھی، تمہیں پیدا کرنے والا بھی، اور تمہارا مربی بھی، تمہاری ساری ضرورتیں پوری کرنے والا بھی، اور پھر تم میری نافرمانی کرو، تو مجھے ناراض ہونے کا حق ہے، سزا دینے کا بھی حق ہے، لیکن ایک تو تم ہو کہ احسان فراموشی میں مبتلا، اور جب ایک شخص کسی پر احسان کرتا ہے اور سامنے والا احسان فراموشی کرتا ہے، یعنی احسان کا بدلہ نہیں دیتا، تو دوسری مرتبہ احسان نہیں کرے گا، اور دل اگر بڑا ہے تو دوسری مرتبہ کرے گا، تیسری مرتبہ کرے گا، چوتھی مرتبہ کرے گا، پھر چھوڑ دے گا، اور بہت بڑا دل ہے، حوصلہ بہت بڑا ہے، تو 100 مرتبہ، 150 مرتبہ، 1000 مرتبہ، ایک وقت آئے گا کہ وہ چھوڑ دے گا، پھر احسان نہیں کرے گا۔ تو حق تعالی شانہ اس حدیث قدسی میں یہ اشارہ فرما رہے ہیں کہ انکم تخطئون باللیل والنہار، میں نے تمہیں سب کچھ دیا مگر تم احسان فراموشی کرتے ہو، اور احسان فراموشی بھی کیسی، رات اور دن، اور اس احسان فراموشی کے بدلے میں احسان کے دروازے کو بند کرنے کے بجائے وانا اغفر الذنوب جميعا، میں مزید احسان کرتا ہوں اور تمہاری ساری احسان فراموشیوں کو معاف کر دیتا ہوں، اور آگے پھر فرماتے ہیں کہ فاستغفرونی، لہذا تم سے اگر غلطی ہو جایا کرے تو مجھ سے معافی مانگ لیا کرو، اغفر لکم، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ بڑے مہربان، بڑے مہربان، بڑے مہربان میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میری ماؤں، میری بہنوں، کبھی کبھی بیٹھ کر صرف اللہ کی مہربانیوں کو سوچا کرو، اللہ کے لطف و کرم کو سوچا کرو، کیسے مصیبت میں مبتلا ہو گیا تھا اور اللہ نے مجھے نکال لیا تھا، کیسے غلط رخ پہ جا رہا تھا اور اللہ نے مجھے بچا لیا تھا، زندگی میں دینی دنیاوی غلطیاں ہم کرتے ہیں جن کے نتیجے میں آفت اور بلاؤں اور مصیبتوں کا طوفان हमारे सामने आ खड़ा होता है और अल्लाह जल्ल जलालुहु आम मनवालुहु उस तूफान से कैसे हमें निकाल लेते हैं। जब कोई शख्स गुनाह करता है गुनाह, तो गुनाह का नतीजा जिल्लत है, गुनाह का नतीजा रुसवाई है। जितने ज्यादा गुनाह बढ़ते जाएंगे उतनी ही जिल्लतें बढ़ती चली जाएंगी, उतनी ही रुसवाइयां बढ़ती चली जाएंगी। और ये जो गुनाहों के नतीजे में जिल्लत और रुसवाइयों की जुल्मतें जमा हो रही हैं, तो हो सकता है कि इस वक्त इज्जत पे कोई फर्क ना आए, लेकिन हम गुजराती में कहते हैं कि पाप का घड़ा भरता है, एक न एक दिन वो छलकता है, वो ओवरफ्लो होता है, घड़ा जो होता है, घड़ा बर्तन, कोई भी बर्तन जिसमें पानी भरते हैं, तो पानी भरा फिर भरा फिर भरा, जब भर जाएगा तो वो छलकेगा, तो जब तक छलकता नहीं, ओवरफ्लो नहीं होता, तो लोगों को नजर नहीं आएगा पानी। जब छलकेगा तो चारों तरफ नजर आएगा कि पानी है। तो इंसान गुनाह करता है, फिर गुनाह करता है, फिर गुनाह करता है, फिर गुनाह करता है, फिर गुनाह करता है, अल्लाह ओवरफ्लो नहीं होने देता, छलकने नहीं देता, बंदों को छुपा के रखता है। लेकिन एक वक्त आता है कि वो छलकता है फिर, और फिर वो जो जिल्लतें सारी और वो रुसवाइयां सारी गुनाहों की जो अब तक छुपी हुई थी, वो दुनिया ही में जाहिर हो जाती हैं, और दुनिया में नहीं तो फिर आखिरत में जाहिर होंगी। तो गुनाह का माना जिल्लत है, गुनाह का माना रुसवाई है। चाहे इस वक्त वो जिल्लत और रुसवाई नजर आए या ना आए, गुनाह का माना जिल्लत, गुनाह का माना रुसवाई। जितने गुनाह जमा हो रहे हैं उतनी ही जिल्लतें जमा हो रही, उतनी ही रुसवाइयां जमा हो रही। गुनाहों की जो तारीकियां हैं और गुनाहों के जो अंधेरे हैं, वो जिल्लतों के अंधेरे हैं, रुसवाइयों के अंधेरे हैं। जिल्लत का और रुसवाई का गुनाह से बढ़कर कोई काम नहीं है। सबसे बड़ा काम जो जिल्लत और रुसवाई का, वो गुनाह है, अल्लाह की नाफरमानी। लेकिन अल्लाह जल्ला जलालुहु आम मनवालुहु इतने रहीम हैं, इतने मेहरबान हैं कि हमारे गुनाहों को छुपाते रहते हैं, हमारे गुनाहों को छुपाते रहते हैं। अहमद भाई को मैं देखता हूं तो पता नहीं चलता कि आज फजर की नमाज पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी, जोहर की नमाज पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी, असर की नमाज पढ़ी थी, कोई पता नहीं चलता, पता नहीं चलता। तो बिन नमाज को भी हम देखते हैं तो दो ख्याल आ सकते हैं कि शायद इसने नमाज न पढ़ी हो, शायद इसने नमाज पढ़ी हो। तो अल्लाह कितना करीम है कि एक तो हमारे गुनाहों को छुपाया और दूसरे बंदों को यह कहा कि जब तुम किसी मेरे बंदे को देखो और तुम्हारे बारे में बदगुमानी हो तो ये गुनाह है, अच्छा ख्याल रखो उसके बारे में। तो नमाज न पढ़ने वाले के बारे में भी ये ख्याल करो कि इसने शायद घर पढ़ ली होगी, बीमार होगा, इसने शायद दूसरी मस्जिद में पढ़ ली होगी, पता नहीं चलने देता कि ये नमाजी है, पता नहीं चलने देता कि ये जकात नहीं देता, पता नहीं चलने देता कि ये बदनजरी करता है, पता नहीं चलने देता कि ये मूसीकी सुनता है, म्यूजिक सुनता है, पता नहीं चलने देता कि ये अपने दिल में हसद लिए फिर रहा है, पता नहीं चलने देता कि ये किब्र में मुब्तला है। अल्लाह छुपाता है। और किसी के किसी गुनाह की झलक अगर हमें महसूस हो जाती है, कोई अलामत, कोई निशानी, कोई करीना, तो ये चूंकि दलील नहीं है, इसलिए शरीयत ने कानून ये बनाया कि बदगुमानी के लिए दलील की जरूरत है, प्रूफ की, असम्पशन काफी नहीं है, इसलिए हम मजबूर हो जाते हैं कि नहीं तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, मेरा ख्याल गलत है। حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی کی ایک بہت پیاری دعا ہے. حکیم صاحب جو ہیں شاعر بھی بہت بڑے تھے اور بڑے ادیب تھے. شاعر ادیب ہی ہوا کرتا ہے. تو حکیم صاحب یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ یا ربا, اے میرے رب, میری ذلتوں اور میری رسوائیوں کے اندھیروں پر اپنی عزت کے آفتاب کی چند شعائیں ڈال دے. اللہ اکبر, وللہ العزہ. حقیقی عزت تو اللہ ہی کے لیے ہے, اور پھر ولی رسول ہی ولی المؤمنین, اللہ کی عزت ذاتی ہے اور رسول اور مؤمنین کی عزت عطائی ہے. عزت تو اللہ ہی دیتا ہے. تو یہ اللہ, میں تو گناہوں کی وجہ سے ذلتوں اور رسوائیوں کے اندھیروں کو سمیٹ چکا ہوں, جمع کر چکا ہوں, اور کسی وقت بھی میری ذلت ہو سکتی ہے. اے اللہ, میری ذلت اور میری رسوائی کے جو اندھیرے ہیں ان کو تو نے ابھی تک ظاہر نہیں کیا ہے, تو میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ ان اندھیروں کے اوپر تیری عزت کا جو سورج اور آفتاب ہے اس کی چند شعائیں, چند کرنیں ڈال دے اس کے اوپر, تاکہ تیری عزت کی روشنی سے میرے اندھیرے منور ہو جائیں اور میری ذلت عزت سے مبدل ہو جائے. اس کا مطلب ہے کہ اے اللہ, تو تیری مغفرت اور تیری رحمت کی بارش کے چند قطرے میری ان نام فرمانیوں کے نتیجے میں جو جہنم کی آگ سلگ رہی ہے ان کے اوپر ڈال دے, تاکہ یہ آگ ٹھنڈی ہو جائے اور میں قیامت کے دن رسوا ہو کر جہنم میں جانے کے بجائے جنت میں جانے والا بن جاؤں. اور یہ جو حدیث قدسی میں نے آپ حضرات کے سامنے ابھی پڑھی, یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار, یہ بہت لمبی ہے, اور اس میں شروع کے جملے جو ہیں وہ یا عبادی کے خطاب سے شروع ہوتے ہیں. یا عبادی, یا عبادی, کلکم ضال الا من ہدیتہ, تم سارے کے سارے گمراہ ہو سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دوں. فاستہدون یہدکم, مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا. یا عبادی, اے میرے بندو, کلکم جائع, تم سارے کے سارے بھوکے ہو. الا من اطعمتہ, مگر وہ جسے میں کھانا کھلاؤں. فاستطعمونی اطعمکم, تم مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا دوں گا. یا عبادی, کلکم عارن الا من کسوتہ, اے میرے بندو, تم سارے کے سارے ننگے ہو مگر وہ جسے میں کپڑے دوں. فاستکسونی اکسکم, مجھ سے کپڑے مانگو میں تمہیں کپڑے دوں گا. اے میرے بندو, یا عبادی, انکم تخطئون باللیل والنہار, رات اور دن تم گناہ کرتے ہو, اب تمہیں مغفرت کی ضرورت ہے, تو فاستغفرونی, مجھ سے مغفرت مانگو. اغفر لکم, میں تمہاری بخشش کر دوں گا. یعنی مادی مٹیریل نیڈز بھی میں پوری کرتا ہوں اور روحانی اسپرچل نیڈز بھی میں پوری کرتا ہوں, لہذا مجھ سے مانگو میں دوں گا. اور ہر جملے کے شروع میں یا اے میرے بندو, اے میرے بندو, او مائی سرونٹس, کتنا پیار ہے. یعنی گناہ کرنے والے بندوں کو یا عبادی, اے میرے بندو, تم رات دن گناہ کرتے ہو, خطبے میں جن آیات کی تلاوت کی سعادت نصیب ہوئی ان میں سے جو پہلی آیت ہے اس کا اسلوب بھی یہی ہے. قل, اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ میرا پیغام ان کو پہنچا دیجئے. وہ پیغام کیا ہے؟ یا عبادی, اے میرے وہ بندو, الذین اسرفوا علی انفسہم, جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے گناہ کر کر کے. وما ظلمہم اللہ ولکن کانوا انفسہم یظلمون, جب بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کے نتیجے میں اللہ کی پکڑ آتی ہے. تو اللہ کی پکڑ آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کی ہم نے پکڑ کی ہے ان پر ہم نے ظلم نہیں کیا. کسی کو یہ خیال نہ آئے کہ آسمان سے پتھر برسا دیے, کسی کو یہ خیال نہ آئے کہ بستیوں کو اوپر اٹھا کر کے الٹ دیا, کسی کو یہ خیال نہ آئے کہ ہم نے زلزلہ بھیج دیا, کسی کو یہ خیال نہ آئے کہ فرشتے کی چیخ کے نتیجے میں پوری قوم تباہ ہو گئی. ہم نے ظلم نہیں کیا, یہ نتیجہ ہے ان کے کرتوتوں کا. ولکن کانوا انفسہم یظلمون, یہ اپنے اوپر ظلم کیا کرتے تھے, اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں آج. اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے, گناہ کر کر کے ظلم کیا ہے, مگر ابھی تک میری پکڑ میں تم نہیں آئے ہیں, تو لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. یہ خطاب منکر کو بھی ہے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اب تک کفر سے شرک سے توبہ کر کے ایمان قبول نہیں کیا ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. کہ 60 سال 70 سال 80 سال کی زندگی تو گزر گئی بت پرستی میں, اللہ کے انکار میں, اللہ کو مانتا ہی نہیں تھا یا اللہ کے ساتھ شرک کرتا تھا, اب میری مغفرت کیسے ہوگی؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی زندگیاں میرے نبی کی مخالفت میں گزار دی علیہ الصلوۃ والسلام, اور اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی زندگیاں عام نبی نہیں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں گزار دی, اے میرے وہ بندو جنہوں نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خاص صحابہ کا خون بہایا, تم سے بھی میں خطاب کر کے کہہ رہا ہوں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ایسا مت سمجھنا کہ چونکہ میں قاتل حمزہ ہوں, میں نے تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی چہیتے چچا, اس لیے میرے لیے اب کوئی چانس نہیں ہے. نہ, لا تقنطوا من رحمت اللہ. کیوں بھائی؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, بے شک اللہ تعالی سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. انا تاکید کے لیے ہے, بے شک, لا ریب, بلا شبہ. اور یغفر الذنوب, الذنوب کے اوپر جو الف لام ہے استغراق کے لیے آیا ہے, تو جمیعا کی ضرورت نہیں تھی. ان اللہ یغفر الذنوب, بس اسی کا معنی ہے, بے شک اللہ تعالی تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. لیکن ایک اور تاکید لائے جمیعاً, تاکہ کسی کو کسی قسم کا شبہ نہ رہے. اس جملے میں تین تاکید ہیں, ان اور الف لام استغراق کے لیے اور جمیع, ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. ایک رائے کے دانے کے برابر بھی کسی کو شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ بڑے سے بڑے گنہگار کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اور وجہ اس کی کیا ہے؟ یہ آگے تعلیل ہے, انہ ہو الغفور الرحیم, اس لیے کہ جس کے ساتھ تمہارا معاملہ ہو رہا ہے وہ بہت زیادہ بخشنے والا, بہت بڑا مہربان ہے, بہت زیادہ بخشنے والا, بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. تو جو بہت زیادہ بخشنے والا ہو اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہو, وہ کہے کہ نا 1000 میں سے 50 تو معاف کر دوں گا, 950 نہیں, 950 تو معاف کر دوں گا, 50 نہیں, وہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو تو معاف کر دوں گا, بڑے کو نہیں. نہیں, غفور اور رحیم ہے, اس لیے وہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ہمارے گناہ ہزاروں کی تعداد کو پہنچ جائیں, ہمارے گناہ لاکھوں کی تعداد کو پہنچ جائیں, اربوں ابجوں کی تعداد کو پہنچ جائیں, لامحدود ہو جائیں ہمارے دنیاوی اعتبار سے, بے شمار, لامحدود تو نہیں, بے شمار, پھر بھی ان کی اللہ کی رحمت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں. اس لیے کہ اللہ کی رحمت لامحدود, اللہ کی مغفرت لامحدود, اور ہمارے گناہ محدود. लामहदूद का मुकाबला ही नहीं कर सकती महदूद चीजें, हमें लिमिटेड है हमारे गुना लिमिटेड, और अल्लाह जल्ला जलालहु आमन वालों की रहमत अनलिमिटेड। अल्लाह जल्ला जलालहु आमन वालों की जो रहमत है उस रहमत का सही इदराक जो हमें आखिरत में होगा वो अगर हमें दुनिया में हो जाए तो अल्लाह जल्ला जलालहु आमन वालों का कोई बंदा अल्लाह का मुनकिर भी अल्लाह की रहमत से मायूस न होता। अगर हमें यहां नजर आ जाती वो रहमत की, अल्लाह की रहमत कितनी है। बहुत रहीम है अल्लाह जल्ला जलालहु आमन। हजरत मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिद्दोजहद और मेहनत के नतीजे में इस्लाम पनपने लगा, इस्लाम को तरक्की मिली, तो वो जो इस्लाम के दुश्मन थे और सलीमुत्तबा थे उनको यह एहसास होने लगा कि गलती हमारी है, हम गलत रविश पे हैं और इनका दीन सही मालूम हो रहा है, ये अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं, लिहाजा हमें तौबा कर लेनी चाहिए और ईमान कबूल कर लेना चाहिए। लेकिन हमने इनका इनकार किया, हमने ईमान कबूल नहीं किया बल्कि इनकी मुखालफत की, बल्कि इनके खिलाफ हथियारों से लैस होकर मैदान में उतरे, इनके कितने साथियों को तलवार की घाट उतारा, पता नहीं हमारा ईमान लाना मुफीद भी होगा या नहीं, इतने बड़े बड़े गुनाह जो हमने किए हैं। बाकी अपने जो इंफिरादी गुना इज्तिमाई गुना वो अलग, लेकिन पैगंबर के मामले में कितने बड़े बड़े गुना, पैगंबर के मुकाबले में तलवार लेकर मैदान में उतरना कोई छोटा काम है, पैगंबर से दुश्मनी रखना कोई छोटा गुना है। हदीसे कुदसी में अल्लाह ताला शानहु इरशाद फरमाते हैं, मन आदाली वलीयन, जो मेरे किसी वली से दुश्मनी करता है, फकद आज़न्तुहु बिल हर्ब, मैं तो उसके साथ जंग का ऐलान करता हूं। तो नबी से कोई दुश्मनी करे और वो भी सैयदुल मुरसलीन से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्हें यह एहसास हुआ। अल्लाह जल्ला जलालहु आमन वालहु ने इनके लिए ये जो एक रुकावट थी इस्लाम कबूल करके जन्नत में जाने की, इस रुकावट को दूर करने के लिए ये आयत नाजिल की कि मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है, तो इसका ताल्लुक तो गैर मुस्लिम के साथ भी है, मुस्लिम के साथ भी है, मगर सबब नुजुल गैर मुस्लिम है, और गैर मुस्लिम भी वो जिसने नबी की मुखालफत की है, जिसने सहाबा को कत्ल किया और इस्लाम के मिशन को दफन करने की कोशिश में लगे रहे कई सालों तक, उनके बारे में आयत उतरी, ये मेरे वो बंदो, उनको कहा जा रहा है कि ये मेरे वो बंदो, तुम तो मेरे बंदे हो। ये जो एक खलिश थी अंदर, इससे कि शैतान और नफ्स क्या करते हैं, या तो किसी को उम्मीदों से बहलाते हैं, अल्लाह गफूरुर रहीम है, अल्लाह गफूरुर रहीम है, इससे नमाज पढ़ी ना पढ़ी क्या फर्क पड़ जाता है, गुनाहों से तौबा की नहीं कि क्या, अल्लाह गफूरुर रहीम है, अल्लाह गफूरुर रहीम है, बस एक तो ये बहलावा, एक ये उसकी चाल है शैतान की। और दूसरी चाल क्या है, मायूस करना, मायूसी पैदा करना, होप खत्म कर देना कि मेरे लिए कोई होप नहीं है, मैं इतना गुनेगार कि मेरे लिए कोई होप नहीं है। अब जब मैं इतना गुनेगार कि मेरे लिए कोई होप नहीं है और शायद मुझे हुस्ने खातिमा भी न मिले, जहन्नम ही में जाना है, तो अब ये जो कुछ थोड़ा बहुत कर रहे हैं इसका भी क्या फायदा, छोड़ दो इसे भी, या ये कि एक दो हफ्ते तक बहुत अच्छा जाता है फिर स्लिप हो जाता है, नमाजें छूटती हैं, मामूलात छूटते हैं, गुनाह हो जाते हैं, एक दिन दो दिन तीन दिन चार दिन फिर अल्लाह ताला खड़ा कर देते हैं, फिर वो गिर जाता है, फिर खड़ा कर देते हैं। तो अब शैतान को तो पता है कि ये चलता है गिरता है, गिरने के बाद तौबा करके फिर खड़ा हो जाता है, फिर चलता है फिर गिरता है, फिर चलता है फिर गिरता है, तो जो खड़ा हो जाता है बार बार तौबा करके, तो इसका असर और इफेक्ट ये है कि बहुत जल्दी पूरा दिन इसकी गिरफ्त में आ जाएगा और फिर गिरेगा नहीं, तो इससे पहले कि इसे इस्तिकामत मिल जाए इसे मायूस करना चाहिए, तो ऐसा मायूस हो जाता है कि मैं तो बहुत ट्राई करता हूं, बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन मेरे ख्याल में मेरे मुकद्दर में विलायत नहीं है, मेरे मुकद्दर में तकवा नहीं है, मेरे मुकद्दर में इस्तिकामत नहीं है, तो व्हाट्स द पॉइंट, क्यों क्यों ये सब कोशिश क्यों करूं। ये शैतान की दो बड़ी बड़ी चालें हैं, इनको जहन में रखिए आप। जहन में रखिए, लो प्रेशर भी अच्छा नहीं है और हाई प्रेशर भी अच्छा नहीं है। ईमान में भी अगर हाई प्रेशर हो गया तो गड़बड़, लो प्रेशर हो गया तो गड़बड़। लो प्रेशर कैसे हो जाता है, जब मायूसी आ जाती है, मायूसी, ये लो प्रेशर हो गया, प्रेशर आपका लो हो गया, लो प्रेशर, मायूसी आ गई, डिस्पोंडेंसी आ गई कि मेरी तो मगफिरत नहीं होगी, मेरी मगफिरत नहीं होगी, मेरी मगफिरत, ये लो प्रेशर हो गया। और जब प्रेशर लो हो जाता है तो आदमी को कमजोरी फील होती है, चक्कर भी आते हैं, तो अब आमाल में कमजोर हो गया। और हाई प्रेशर, ईमान का हाई प्रेशर किया है, मैं तो जन्नती हूं, नमाज नहीं पढ़ता फिर भी मैं जन्नती हूं, मां बाप को सताता हूं फिर भी मैं जन्नती हूं, बदनजीरी करता हूं फिर भी मैं जन्नती, ये हाई प्रेशर हो गया। तो हाई प्रेशर भी बहुत खतरनाक, उसमें भी चक्कर आते हैं, उसमें भी गिरता है, उसमें रग भी फट सकती है, स्ट्रोक भी हो जाता है। इसलिए डॉक्टर हजरात ये कहते हैं कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाए तो भी खतरनाक, लो हो जाए तो भी खतरनाक, अपनी जगह पे रखो, इसको मॉडरेशन कहते हैं। ब्लड का प्रेशर मॉडरेट होना चाहिए। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान के बारे में भी यही कह गए हैं कि ईमान का प्रेशर हाई हो जाए तो भी खतरा, लो हो जाए तो भी खतरा, इसे मॉडरेट रखो। और मॉडरेट कैसे रहेगा, फियर भी हो और होप भी हो, खौफ और फियर, खौफ और रजा, उम्मीद, दोनों बैलेंस करो, इनको बैलेंस करो। दिल में यह ख्याल आए कि अल्हम्दुलिल्लाह रमजान का महीना बहुत अच्छा गया, हमारी थिंकिंग के मुताबिक, हो सकता है बहुत बुरा गया हो, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग है, अल्लाह चला रहा है, अल्लाह हिम्मत दे रहा है, बहुत अच्छा रमजान का महीना गया, ऐसा रमजान का महीना तो कहीं नहीं गया, और दिल मेरा ये कह रहा है कि इस रमजान के महीने में तो मेरी मगफिरत हो ही गई होगी, ये देखो एकदम रजा उम्मीद, रजा और उम्मीद, होप होप होप, कि नहीं मैं तो बस अब जन्नत में, उसका कि नहीं थोड़ा साथ में खौफ भी रखो कि हो सकता है कि काम तो मेरे बहुत अच्छे हुए हैं लेकिन किसी अमल में कोई ऐसी खराबी आ गई हो जिसकी वजह से सारे अमल बर्बाद ना हो जाएं, इसलिए उम्मीद तो मैं रखूंगा कि ये सारे अमल अच्छे हुए हैं और अल्लाह कबूल करेगा, लेकिन साथ में ये अल्लाह माफ कर दे, ये अल्लाह माफ कर दे, ये अल्लाह माफ कर दे, रब्बना तकब्बल मिन्ना, ये अल्लाह कबूल कर ले, इसलिए कि अच्छे काम नजर आ रहे हैं मुझे, लेकिन हो सकता है कि उसमें फरोगुजाश्त हुई हो, कोई गलती हुई हो, तो वतुब अलैना, वतुब अलैना, आप तौबा कबूल कीजिए, इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम, दोनों। और हालात बहुत खराब गए और दिल में ऐसा आ रहा है कि बस मेरे ऊपर फिटकार है, किसी की लानत है, कोई अमल मेरा ऐसा हो गया है कि अब तो मेरी कोई मगफिरत नहीं, तौफीक ही नहीं मिल रही है, इसलिए बस अब सब छोड़ छाड़ करके बैठ जाओ, ये एकदम फियर पैदा हो गया, साथ में होप के नहीं 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 नहीं, नहीं अभी भी मैं अल्लाह से मांगूंगा तो अल्लाह मुझे दे देगा, अल्लाह से मांगूंगा तो अल्लाह मुझे दे देगा, अल्लाह से मांगूंगा तो अल्लाह मुझे दे देगा। देखो अल्लाह ताला शानहु कुरान मजीद में क्या इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह यजतबी इलैहि मन यशा व यहदी इलैहि मन युनीब, अल्लाह ताला शानहु जिसको चाहते हैं चुन लेते हैं, जिसको चाहते हैं मुंतखब कर लेते हैं, जिसको चाहते हैं चूज कर लेते हैं, जिसको चाहते हैं खींच लेते हैं, खींच अपनी तरफ यूं खींच लेते हैं, खींच करके दोस्ती बना लेते हैं। हम भी खींचते हैं, इंसान भी एक दूसरे को खींचता है, मुफ्ती साहिब से हमारा दिल लग गया, हमें अच्छे लगे, बाज दफा दुनियावी रुझानात होते हैं तो दुनियावी एतबार से अच्छे लगते हैं, दीनी रुझानात होते हैं तो दीनी एतबार से कि माशाल्लाह मुफ्ती साहब में बहुत अखलाक हैं, बहुत साहिब इल्म हैं, मुझे अच्छे लगते हैं, मैं चाहता हूं कि इनके साथ दोस्ती बढ़े, कभी बड़े के साथ ऐसा करते हैं, कभी छोटे के साथ ऐसा करते हैं, तो उनके न चाहने के बावजूद भी उनको जरा मैं मुझसे एक मिनट जरा मुझसे आपको एक किताब दो, मुझसे आपको खुशबू दे दो, टैक्स किया हुए बहुत दिन हो गए तुम मुझे याद नहीं कर रहे हैं। तो ये छोटा अगर बड़ा उसको खींचता है तो उस वक्त जो है उसे उसकी कदर नहीं होती, लेकिन जब ताल्लुक पैदा हो जाता है ना तो जिंदगी भर एहसानमंद रहता है कि ओहो इतने बड़े आदमी, और अगर ये मुझे खींचते नहीं तो इन अल्लाह की मारिफत जो आज मुझे हासिल हुई है और अल्लाह की मोहब्बत की फिक्र पैदा हुई है और इस रास्ते में मैं लगा हुआ हूं, ये दौलत तो मुझे मिलती ही नहीं। ये मेरे देखो तो बंदे भी एक खींचते हैं, तो अपने बंदों में से बाजों को अल्लाह भी खींचते हैं। अल्लाह यजतबी इलैहि मन यशा, अल्लाह खींच लेता है अपनी तरफ जिसे चाहते हैं, खींच लेता है अल्लाह, मुंतखब कर लेता है, चूज कर लेता है कि मैं इसे वली बनाऊंगा। मुफस्सरीन फरमाते हैं कि ये आयत का ये जो पहला टुकड़ा है इसके मिसदाक अंबिया अलैहिस्सलाम हैं और अवलिया हैं। अल्लाह यजतबी इलैहि मन यशा, अल्लाह जिसे चाहते हैं मुंतखब कर लेते हैं कि मैं इसको नबी बनाऊंगा। अल्लाह यस्तफी मिनल मलाइकति रुसुलन व मिनन नास, जिसे चाहते बना लेते हैं, और अल्लाह जल्ला जलालहू आम मनवालू जिसे चाहते वली बना लेते हैं, बगैर मेहनत के अचानक कोई ऐसा करिश्मा हुआ और ओवरनाइट वली बन गया। ऐसे बहुत वाकियात हैं। तो अल्लाह यजतबी इलैहि मन यशा, नबी की फितरत में मुजतबाइयत होती है, वो तो जब दुनिया में आता है उसी वक्त से उसका कल्ब हमेशा आखिरत की फिक्र में रहता है। अल्लाह जल्ला जलालहु आम मनवालहु कुरान मजीद में कई अंबिया अलैहिस्सलाम का जिक्र करके इरशाद फरमाते हैं कि इन्ना अखलसनाहुम बिखालिसतिन, हमने उनको खालिस कर दिया एक खास चीज के साथ, और वो खास चीज क्या है, जिक्रदार, दारे आखिरत की याद। अल इनाबतु इला दारिल खुलूद, इनकी फितरत में रखा गया है अंबिया अलैहिस्सलाम। और ऐसे अवलिया भी होते हैं कि उनकी फितरत में अल इनाबतु इला दारिल खुलूद होता है, जिनको हमारी इस्तिलाह में मादर जाद वली कहते हैं। अल्लाह का कोई बड़ा वली दुनिया में एक काम लेकर के उठता है तो वो बड़े लोग जिन्होंने उनको बचपन में देखा हुआ होता है वो कहते हैं कि ये मादरजाद वली है, ये तो बचपन ही से नेक है, बचपन ही से नमाजी है, बचपन ही से शरीफ है। ये है अल्लाह यश्तबी इलैहि मन यशा। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक शख्स गुनहगार है और अल्लाह उसे मुंतखब कर लेते हैं बगैर उसकी किसी मेहनत के। अल्लाह यश्तबी इलैहि मन यशा, इज्तिबा, इसको तसव्वुफ की इस्तिलाह में जज्ब कहते हैं, अल्लाह उसे जज्ब कर लेते हैं, खींच लेते हैं अपनी तरफ। तो अल्लाह जल्ला जलालुहू आम मनवालुहू के कुर्ब को पाने के दो तरीके अल्लाह ने बतलाए हैं इस आयत में। एक तो यह है कि अल्लाह खुद ही खींच लेते हैं, खुद ही खींच लेते हैं। जैसे एक क्लास के अंदर 25 बच्चे हैं तो उस्ताद का मैलान किसी दो तीन तालिबे इल्मों की तरफ हो गया, कभी एक की तरफ हो गया तो उनको करीब किया किसी तरह, बुला बुलाकर हदीये दे देकर हंसी मजाक करके कि ये कुछ काम के लग रहे हैं इनको करीब कर लो और इनको काम में लगाओ, इनको अच्छा आलिम बनाओ। और कुछ तलबा वो होते हैं कि उनकी तरफ उस्ताद का मैलान नहीं होता, उस्ताद की तवज्जो नहीं होती, तो वो उस्ताद की तवज्जो को अपनी तरफ मबजूल कराने के लिए लगे रहते हैं कि हमको ऐसा काम करे कि उस्ताद की तवज्जो हमारी तरफ हो जाए। ये है वयहदी इलैहि मन युनीब। तो बाजों को अल्लाह खींच लेते हैं और जिनको खींचते नहीं तो मेहनत करते हैं, इनाबत, रुजू करते हैं अल्लाह की तरफ, और जब रुजू करते हैं तो अल्लाह उनको भी हिदायत देना शुरू कर देते हैं। ये जो पहले है ये मजजूब है, मजजूब, अल्लाह खींच लेते हैं, करीब कर लेते हैं अल्लाह, या तो इब्तिदा ही से या गुनाहों की दलदल में फंसे हुए होने के बाद मुझ तबाही या तो उनको नसीब हो जाती है। लेकिन खींच लेते हैं का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह उनको करीब कर लेते हैं और उनको कुछ करना नहीं पड़ता और वो विलायत के मकाम पर फाइज हो जाते हैं और विलायत के मकाम पर फाइज होने के बाद भी पहले जैसे अय्याशी करते थे वैसे अय्याशियों में रहते हैं और अल्लाह कहते हैं कि ये मेरा दोस्त हो गया है, मैं इसे अब जन्नत में ले जाऊंगा, ऐसा नहीं। खींच लेते हैं का मतलब ये कि अल्लाह बगैर उसकी किसी मेहनत और कोशिश के अपनी तरफ खींच लेते हैं और खींचकर उसके दिल में जिक्रदार आखिरत की फिक्र पैदा कर देते हैं, इनाबत पैदा कर देते हैं, वो अल्लाह की तरफ रुजू करने लग जाता है और मेहनत में लग जाता है। सालिक किसको कहते हैं? जो अल्लाह तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हो, मेहनत कर रहा हो, शरीयत मुतहरा की पाबंदी की कोशिश करता है, वो नफ्स का मुकाबला करता है, शैतान का मुकाबला करता है, इसको सालिक कहते हैं। ये तसव्वुफ की इस्तिलाह में ये जो कैटेगरी है अल्लाह यश्तबी इलैहि मन यशा, इसको मजज़ूबे सालिक कहते हैं कि ये वो है जिसको अल्लाह ने खींच लिया और खींचने के बाद काम में लगा दिया, लग गया काम में वो, लेकिन अल्लाह ने लगाया, उसकी तरफ से कोई कोशिश नहीं थी। और वयहदी इलैहि मन युनीब, अल्लाह रास्ते पे डाल देते हैं उसको जो अल्लाह की तरफ रुजू करता है, अल्लाह ये अल्लाह में मुझे मेहनत में जो कुछ कर रहा हूं उसमें बरकत दे, मुझे तू अपनी तरफ खींच ले, ये अल्लाह तू मुझे रास्ते पे चला दे, इसको कहते हैं साली के मजजूब। कि शुरू शुरू में अल्लाह उससे मेहनत करनी पड़ती है उसे, और जब मेहनत करता है तो फिर अल्लाह खींच लेते हैं, यानी जज्बे इलाही के बगैर कोई कामयाब नहीं हो सकता। अल्लाह की विलायत कोई आसान काम थोड़ा है कि कोई ये कहे कि मेरे अंदर ये ताकत है कि मैं अल्लाह का दोस्त बन जाऊंगा, नहीं, अल्लाह खींचकर दोस्ती करेंगे तो होगी, मगर उसके दो तरीके हैं कि अल्लाह पहले ही खींच लेते हैं और दोस्त बनाकर फिर उसे लगा देते हैं, तो ये मजजूब है और सालिक, पहले अल्लाह खींच लेते हैं फिर इससे मेहनत कराते हैं, और दूसरा सालिक के मजजूब कि अल्लाह खींचते नहीं मेहनत करता है, और मेहनत के नतीजे में जब अल्लाह उसकी मेहनतों को देखते हैं तो उसे खींच लेते हैं। जिसे तालिबे इलम अच्छा लगा, उसे खींच लिया, करीब कर लिया, और करीब करके खूब मेहनत करवाई तो बहुत बड़ा अल्लामा बन गया। और दूसरा एक तालिबे इलम है कि वो अल्लामा बनने ही के लिए आया था, बहुत मेहनत कर रहा था और वो समझ रहा था कि उस्ताद की तवज्जो के बगैर तो मेरे लिए मुश्किल है, तो वो कोशिश करता है, खिदमत करता है, पीछे पीछे रहता है, सामने आकर के बैठ जाता है, सवाल अच्छे अच्छे पूछता है, कुछ अपनी तहकीक होती है तो वो पेश करता है कि मैंने कल, तो ये अपनी मेहनत से सालिक, फिर मजजूब उस्ताद के दिल में होता है, उस्ताद उसे खींच लेता है, उसी वरी भी अल्लाह में बन जाता है। अल्लाह यजतबी इलैहि मन यशाउ व यहदी इलैहि मन युनीब। तो मैं ये अर्ज ये करना चाहता हूं कि अल्लाह जल्ला जलालुहु व अम्मनवालुहु इन्नल्लाह यग़फिरु ज़ुनूब जमीया, अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। कभी कभी अल्लाह खुद खींच लेते हैं और माफ फरमा देते हैं और राह पे लगा देते हैं, और कभी कभी रुजू की वजह से, वो पहला मामला खास है और दूसरा मामला आम है, वो कम लोगों के साथ होता है, ज्यादातर मामला मेहनत पहले करनी पड़ती। तो हकीम अख्तर साहिब रहिमहुल्लाह ताला ने यहां बहुत अच्छी बात इरशाद फरमाई है। हकीम साहिब रहमतुल्लाह अलैहि इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मन वालुहु ने जब ये कुरान में फरमाया कि अल्लाह ताला शानुहु अपनी तरफ जिसको चाहते हैं खींच लेते हैं, तो अल्लाह ने बंदों को यह बतला दिया कि एक कैटेगरी ऐसे लोगों की भी है, ये अल्लाह ने बतला दिया। ये नहीं कहा कि मैंने बाज लोगों को खींच लिया है और वो दरवाजा बंद हो गया, नहीं, अल्लाह जिसे चाहते हैं कियामत तक खींचते रहेंगे। इसको जरा समझने के लिए पहले एक हिस्से मिसाल मुझसे समझ लो। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, 2.5 साल के, 3 साल के, 3.5 साल के, तो बच्चों के सामने जब आप जिक्र करते हैं कि मेरे पास बहुत अच्छी चॉकलेट है, क्यों जिक्र करते हैं भाई? इसलिए कि आप उनको देना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि ये मुझसे मांगे। तो हकीम साहब फरमाते हैं कि अल्लाह जल्ला जलालुहु व अम्मनवालुहु ने कुरान में हमें खबर इसीलिए दी है, कि मैं मेरे बाज बंदों को बगैर उनकी मेहनत के खींच भी लेता हूं, ताकि हम अल्लाह से कहें कि अल्लाह आप मुझे भी खींच लीजिए, ये अल्लाह आप मुझे खींच लीजिए, आप मुझे वली बना दीजिए, मैं बहुत गंदा, ये अल्लाह आप बना लीजिए, ये अल्लाह मुझे आप। वो जो जहन्नम से निकलने वाला आखिरी शख्स होगा ना, वो कहेगा ला कुनो अश्का खल्के, ये अल्लाह आपकी मखलूक में मैं सबसे ज्यादा बदतर, कि मैं निकलूंगा ही नहीं, ये जो आपके सारे मुसलमान निकल गए ईमान वाले, मैं अकेला यही पड़ा रहूंगा। तो आप ये कहिए अल्लाह से कि अल्लाह क्या मैं इतना बदबख्त कि मुझे आप विलायत नहीं देंगे। अल्लाह खींच लेगा और खींच करके इनाबत की राह पे डाल देगा। इसमें आयत में क्या तरतीब है, पहले मशीयत आती है कि अल्लाह का पहले इरादा बनता है, तो बंदा जब गिर गिराएगा तो अल्लाह का इरादा बनेगा, इरादा बनेगा तो वो इज्तिबा का खींचने का फैसला करेगा, और जब खींचने का फैसला करेगा तो इनाबत की तौफीक दे देगा, और जब इनाबत की तौफीक मिलेगी तो हिदायत मिलेगी, जिसके नतीजे में वो अली हो जाएगा। यानी मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि अल्लाह जल्ला जलालुहु अम्मन वालू इतने ज्यादा रहीम है कि कभी कभी यूं ही खींच लेते हैं, और कभी कभी अल्लाह जल्ला जलालुहु अम्मन वालू मेहनत कराते हैं, और ये खींच लेते हैं वो भी अल्लाह का फजल है, और मेहनत की तौफीक भी वही देते हैं। इसलिए अल्लाह ने इस आयत में कहा कि तुम घबराओ बिल्कुल नहीं, बड़े बड़े गुनाह तुमने किए हैं, मायूस होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, मैं तुमको खींचने के लिए तैयार हूं, बस तुम इतना कर लो, वह अनीबू इला रब्बिकुम, अपने परवरदिगार की तरफ रुजू करो, रुजू करो, वह अनीबू इला रब्बिकुम वस्लिमू लहू, उसके उसके सुपुर्द कर दो अपने आप को। इससे पहले कि तुम्हारी पकड़ हो जाए, अजाब आ जाए, और अजाब आ जाए और फिर तुम्हारी मदद ही ना हो, इससे पहले पहले तुम कुछ कर लो, बस अल्लाह जल्ला जलालुहु अम्मन वालुहु मुझे आपको इसकी तौफीक अता फरमावे। तो हमें जो है, हमें पहले तो शऊर रखना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए जितनी हमसे हो सके, और मायूस कभी नहीं होना है, जितनी मेहनत वयहदी इलैहि मन युनीब, इसलिए कि जज्ब होगा नहीं होगा हमें तो पता नहीं है, तो हमें मेहनत करनी है, और मेहनत करके अल्लाह से उम्मीद रखनी है कि अल्लाह जज्ब कर लेगा, और साथ में दुआ भी करनी है कि अल्लाह टूटी फूटी मेहनत है, मेहनत कहलाए जाने के काबिल नहीं, आप यूं ही हमें जज्ब कर लीजिए। और इस सिलसिले में अल्लामा बगवी रहिमहुल्लाह तआला, अल्लामा नसफी रहिमहुल्लाह तआला, और मुल्ला अली कारी रहिमहुल्लाह तआला ने इन आयात का जो तफसीली शानी नुजूल बयान किया है, वो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अल्लाह कैसे यूं ही खींच लेते हैं। उसके बाद फिर आज की मजलिस खत्म करते हैं, बहुत ही पुरलुत्फ किस्सा है कि अल्लाह की रहमत कितनी बेपाया। मक्का फतह हो गया, हजरत वहशी रजी अल्लाह तआला अन्हु उस लिस्ट में थे कि जिनके बारे में ऐलान हो चुका था कि सबको माफी है मक्का मुकर्रमा में, सिवाय इन हजरात के, तकरीबन दो डजन थे, एक जहां कहीं मिले इनको कत्ल कर दो। उनमें से एक इब्ने खतल था, इब्ने खतल जो है वो काबे के गिलाफ को पकड़े हुए था कि मुसलमान अब तो दाखिल हो गए हैं और बचने की एक ही शक्ल है कि मैं काबे के गिलाफ को पकड़ के चिपका रहूं। उसके जहन में ये बात आई, तो एक शख्स आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और आकर के ये कहा कि इब्ने खतल मुतअल्लिकुम बिअस्तारिल काबा, वो तो काबे के पर्दों पे चढ़ गया है और उसे पकड़ के, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस बदबख्त को उसी हालत में कत्ल कर दो। यानी ये कितने खतरनाक लोगों की लिस्ट होगी, उसमें हजरत वहशी थे, उनको पता था कि मेरा नाम भी है, तो वो मक्का मुकर्रमा से ताइफ भाग गए। मुख्तलिफ रिवायात है, इसीलिए मैंने तीन किताबों के हवाले दिए हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त अल्लाह ताला जिस वक्त हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया था हजरत वहशी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, तो उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खा करके ये कहा था कि अल्लाह की कसम मेरे चचा को शहीद किया गया है, उसके बदले में मैं उनके 70 आदमियों को 70 को कत्ल करूंगा, कितना दुख पहुंचा होगा। मगर इस्लाम कैसा मजहब, इधर महबूब रब्बुल आलमीन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे अल्लाह के प्यारे हबीब और उनके चचा का कत्ल बहुत बेदर्दी और बेरहमी के साथ, और अल्लाह उस दिल को देख रहा था कि मेरे महबूब का दिल कितना जख्मी है। और ऐसे मौके पर बड़ा जो है वो छोटे मुहिब जो है वो महबूब को इजाजत देता है कि ठीक है तुम कर लीजिए, एक के बदले में 70 हमजा था भी तो वैसा। लेकिन फौरन आयत नाजिल हुई, वही आकब तुम फाकिबू बिमिस्लि मा उकिब तुम भी, अगर तुम बदला लो तो बराबरी के साथ बदला लो, एक के बदले में एक। वहीन आकब तुम फाकिबू बिमिस्लि मा उकिब तुम भी वलईन सबर तुम लहू खैरुलिस्साबिरीन, और अगर तुम सबर कर जाओगे तो सबर करने वालों के लिए सबर करना बहुत बढ़िया है। बस ये आयत उतरी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बस मैं सबर कर जाऊंगा और एक के बदले में एक भी नहीं लूंगा। लेकिन ऊपर से वही थी कि इन इन लोगों को कत्ल करना है, इल्ला ये कि वो मुसलमान हो जाए। वहशी का पता चला कि वो ताइफ में बैठा हुआ है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को भेजा ताइफ के जाकर के उनको दावत दो इस्लाम की और ईमान की, इसलिए कि वो सब्र का फैसला कर चुके थे कि हमें कत्ल नहीं करना है। आप अंदाजा लगा सकते हैं ना कि हजरत को कितनी तकलीफ, लेकिन भेजा के जाओ। हजरत वहशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी आखिरत का सौदा करने का फैसला कर चुके थे कि ईमान भी कबूल करें, सब कुछ करें, और फिर आखिर में जहन्नम ही में जाना पड़े तो क्या फायदा। तो हजरत वहशी रजी अल्लाह तआला उन्होंने वहां से यह कहलवाया कि आपका कुरान यह कहता है कि इन मन अशरक वकतल वजना यल्क असामा। देखो भाई, हजरत वहशी रजी अल्लाह तआला उन्हों जमाने कुफर में भी कुरान पढ़ते थे, कुरान सुनते थे, कि तुम्हारा कुरान ही कहता है वल्लज़ीन ला यदऊन मअ अल्लाहि इलाहन आखर, जो शिर्क करते हैं, वला यक्तुलून नफ्स अल्लती हर्रम अल्लाह इल्ला बिल हक, जो कत्ल करते हैं, वला यज़नून, जो जिना करते हैं, यल्का असामा वमन यफअल ज़ालिक, जो ये काम करते हैं यल्का असामा, वो गुनहगार हैं, वो इस्म के मुर्तकिब होते हैं, लिहाजा युदाफ लहुल अज़ाब यौमल क़ियामा, क़ियामत के दिन उनके लिए अज़ाब को दुगना किया जाएगा, दुगना चुगना किया जाएगा। वयख़लुद फ़ीही मुहाना, और उसमें हमेशा हमेशा रहेगा। तो इस आयत को सामने रखकर उन्होंने कहा कि इन्नहु मन अशरक वक़तल, जो शख्स शिर्क करता है, जो कत्ल करता है, वजना और जो जिना करता है, यल्का असामा युजाफ लहुल अज़ाब यौमल क़ियामा व यखलुद फीही मुहाना, कुरान कहता है तो कत्ल अशरक तो व कत्ल तो वजनई तो, मैं तो ये सारे काम कर चुका हूं, तो इस्लाम कबूल करने का मुझे क्या फायदा है। भाई मामला सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के साथ हो रहा है, छोटी छोटी बातों में हम क्या कहते हैं, अरे यार इतना शरीर आदमी है और हम उंगली उसको दे रहे हैं और शर्तें लगाता है, जा भाड़ में जा। अल्लाह जल्ला जलालुहु आमन वालुहु ने अपने पैगंबर पर आयत उतारी, इल्ला मन ताब व आमन व अमिल अमलन सालिहन फौलाइक युबदिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात। हां ये लोग जो जहन्नम में रहेंगे, जलील होंगे, इनमें से जो तौबा कर लेता है और तौबा करके शिर्क छोड़कर ईमान कबूल कर लेता है, और ईमान कबूल करने के बाद अमल सालेह गुनाहों से बचकर जिंदगी गुजारता है, तो ऐसे लोगों को हम सिर्फ माफ नहीं करेंगे, इनके गुनाहों को नेकियों से बदल देंगे। फौलाइक युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात वकान अल्लाह गफूर रहीम। बहुत बड़ी बशारत थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कासिद को फिर भेजा, मक्का मुकर्रमा और ताइफ के दरमियान फासला भी कुछ छोटा नहीं है, फिर भेजा। तो वहशी ने कहा कि बात तो बहुत उम्दा है लेकिन इसमें तो बहुत सारी शर्तें हैं। तौबा करे, ईमान ले आए, यहां तक तो ठीक है, मगर वामिला अमलन सालिहन, फिर गुनाह न करे, सही जिंदगी गुजारे, लअल्ली ला अकदिर अलैह, शायद मैं ये काम न कर सकूं, ये शर्त जरा मुश्किल है। फिर वो कासिद आया मक्का मुकर्रमा, ये जज्ब देखो, अल्लाह खींच रहे हैं अपनी तरफ। तो कासिद आया मक्का मुकर्रमा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो बात पेश की, तो अल्लाह ताला शानहू ने फिर एक आयत नाजिल की, इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरका बिही, अल्लाह ताला शिर्क को तो माफ नहीं करते। तो ईमान ले आओ और तौबा कर लो, तौबा कर लो, ईमान ले आओ, और उसके अलावा जो गुनाह हो जाए तो वयग़फिरु ज़ालिका, वयग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, शिर्क के अलावा, कुफ्र के अलावा जो नाफरमानियां है, अल्लाह जिसके लिए चाहेंगे माफ कर देंगे, जिसके लिए चाहेंगे माफ कर देंगे। तो इसकी बहुत ज्यादा फिक्र मत करो यूं, अब तो मामला क्लियर हो गया। लेकिन हजरत वहशी रज़ी अल्लाह तआला ने उस पर भी इश्काल किया, कहा कि इन्नी लफी शुबहतिन, मुझे तो इसमें शुबहा है। भाई क्या शुबहा है? तो कि अल्लाह तो ये फरमाते हैं कि जो ईमान ले आए शिर्क को छोड़कर, तो ऐसी जमात में से जिसको चाहेंगे माफ कर देंगे। तो जिसको चाहेंगे माफ कर देंगे, हो सकता है मुझे माफ ना कर दे, मेरे बारे में मशीयत ना हो। फिर वो आया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने ये आयत उतारी, قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله, अल्लाह की रहमत से मायूस न होना, ان الله يغفر الذنوب جميعا, अल्लाह तआला शानहु सारे गुनाहों को माफ फरमा देते हैं, इन्नहु हुवल गफूर रहीम, इसलिए कि वो बख्शने वाला रहम करने वाला। बस इसी पे आज खत्म कर रहा हूं। क्या पता चला? नंबर एक, अल्लाह बहुत मेहरबान है, इसलिए कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। और ये आयत जो है, ये आयत, ये मायूसी और ना उम्मीदी को दूर करने के लिए उतारी गई है, बेफिक्री और बेपरवाही को, बेफिक्री और बेपरवाही को तरक्की देने के लिए नहीं। इस आयत के उतारे जाने का मकसद ना उम्मीद और मायूस लोगों को हिम्मत दिलाना है कि भाई आप मायूस क्यों होते हैं, ना उम्मीद क्यों होते हैं। ये इसलिए नहीं है कि जो बेपरवाही कर रहे हैं गुनाहों के बारे में वो बेपरवाही करते रहे और जो इताअत कर रहे हैं वो भी बेपरवाह हो जाए, इसके लिए नहीं है। तो अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना है। बड़े से बड़ा गुनाह हो जाए तौबा कर लो चल पड़ो, बड़े से बड़ा गुनाह हो जाए तौबा कर लो चल पड़ो, तौबा कर लो चल पड़ो, तौबा कर लो चल पड़ो। गरीब आदमी है बेचारा और टायर में पंक्चर हो गया है, रिपेयर कराने के लिए पैसे नहीं है, अब गाड़ी चलती है पर 10-12 मील के बाद हवा निकल जाती है, गाड़ी चलती है 10-12 मील के बाद हवा खत्म हो, वो मायूस नहीं होता, वो गाड़ी रोक करके हवा डाल करके फिर आगे, हवा डाल करके फिर आगे, हवा डाल करके फिर आगे, वो मंजिल तक पहुंच जाएगा, लेट पहुंचेगा मगर पहुंच जाएगा। जो नाकाम होता रहे उम्र भर भी, बहरहाल कोशिश तो आशिक न छोड़े, ये रिश्ता मोहब्बत का कायम ही रखे, जो 100 बार टूटे तो 100 बार जोड़े। तो नंबर एक, मायूस कभी नहीं होना है। नंबर दो, कोशिश को जारी रखना है, बेपरवाही बेफिक्री नहीं होनी चाहिए। नंबर तीन, जो शख्स बेफिक्री और बेपरवाही के साथ गुनाहों वाली जिंदगी गुजारता है, अल्लाह की नुसरत हट जाती है और अजाब आता है। तो इससे पहले कि अजाब आ जाए और नुसरत हट जाए, अनीबु इला रब्बिकुम वअस्लिमु लहू, अल्लाह की तरफ इनाबत करो और अल्लाह की तरफ अपने आप को सुपुर्द कर दो और अल्लाह से खूब दुआ करो कि अल्लाह आप हमारा जज्ब कर लीजिए, हमें जज्ब कर लीजिए, आप खींच लीजिए हमें अपनी तरफ, और अल्लाह इनाबत की हमें सही तौफीक दीजिए। अल्लाह ताला शानहू मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमावे। अल्लाह ताला के तमाम अहकाम को पूरा करना है, अल्लाह ताला शानहू की नाफरमानी से बचना है, اور جتنا زیادہ ہو سکے سنن مستحبات نوافل کا اہتمام کرنا ہے, چلتے پھرتے ہر وقت دل دماغ میں اللہ کا ذکر باقی رہے, اور معمولات کی پابندی کرنی ہے, قرآن کی تلاوت کرنی ہے, اپنے ذمے جو حقوق اللہ ہیں جیسے قضا نماز قضا روزے ان کو پورا کرنا ہے, جو حقوق العباد ہے ان کو پورا کرنا ہے, اس سے کہ کفر اور شرک توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے, کفر اور شرک توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے. گناہ کبیرہ, گناہ کبیرہ توبہ ضروری ہے اس کے لیے, لیکن اگر اللہ چاہے تو معاف کر بھی سکتے ہیں, توبہ ضروری ہے اللہ چاہے تو معاف کر سکتے ہیں, لیکن گناہ کبیرہ میں حقوق العباد جو ہیں وہ اللہ معاف نہیں کرتے توبہ کے بغیر, اور گناہ صغیرہ ان نیک کاموں سے خود بخود معاف ہو جاتے ہیں, مگر اگر کوئی کسی گناہ صغیرہ پر اصرار کرتا ہے تو وہ کبیرہ بن جاتا ہے, اس کے لیے توبہ ضروری ہوگی. اس لیے گناہوں سے بچنے کا بہت اہتمام کریں, توبہ بہت کریں, اپنا ایکس رے ایم آر آئی سٹی اسکین کرتا رہے کہ میرے اندر کیا کیا برائیاں ہیں, اور پھر جو برائیاں نظر آئے ان کو چھوڑنے کی کوشش کرے, ان کا علاج کرنے کی کوشش کرے, خود کوشش کرے, اور نہ بن سکے تو اپنے شیخ کی طرف مراجعت کرے, اور شیخ جو کہے اس پر عمل کریں تاکہ وہ برائی ہماری نکل جاوے. اللہ تعالی شانہ ہم سب کے حال پہ رحم فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اس وقت کے جو حالات ہیں ان حالات سے نکلنے کا یہی طریقہ ہے کہ ہم انابت کریں, اللہ کی طرف بھاگیں, اللہ کی طرف رجوع کریں, استغفار کریں. اذان ہوگی, اذان کے بعد انشاءاللہ سنتیں ہوں گی, اور اس کے بعد نماز ہوگی. اب جو ہے اتوار کو ظہر کی نماز کے بعد انشاءاللہ درس قرآن ہوگا, اور انگلش میں تین پروگرام ہو رہے ہیں اس وقت. ایوری ٹیوزڈے دیر از اے پروگرام ان انگلش, ایوری فرائیڈے, ایوری تھرسڈے دیر از اے پروگرام ان انگلش, اینڈ ایوری سیٹرڈے دیر از اے پروگرام ان انگلش آفٹر دی مغرب. اذان کے
الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله